अध्याय 54 रोगियों के लिए प्रार्थना। धर्म पुस्तक कहती है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। लूका 18 आयत 1। और यदि प्रार्थना की किसी समय आवश्यकता पड़ती है तो वो उस समय होती है जब ताकत जवाब देने लगती है और जब मालूम होता है कि प्राण छूटने वाले हैं। जो स्वस्थ हैं अक्सर वे उन कृपाओं को भूल जाते हैं जो उन पर दिन प्रतिदिन तथा प्रतिवर्ष की जाती हैं, और वे परमेश्वर को उन भलाइयों के लिए धन्यवाद नहीं करते। परंतु बीमारी आने दीजिए और परमेश्वर की याद तुरंत होती है। जब मानव शक्ति असफल होती है तब वे परमेश्वर की मदद की आवश्यकता महसूस करते हैं। पर हमारा कृपालु परमेश्वर उस आत्मा को टाल नहीं देता जो सच्चे मन से मदद मांगती हैं। वे ही हमारे दुख में और सुख में शरण स्थान हैं। मसीह आज हमारा वैसा ही करुणामय चिकित्सक है जैसा वो अपने जागतिक सेवा कार्य के समय था। उसमें हर रोग के लिए चंगा करने वाला मलहम और हर कमजोरी के लिए स्वस्थ करने वाली शक्ति है। इस समय के शिष्यों को बीमारों के लिए वैसे ही प्रार्थना करनी चाहिए जिस प्रकार प्राचीन समय के शिष्य किया करते थे। तभी स्वस्थता आवेगी, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचाएगी। हमारे पास पवित्र आत्मा की शक्ति विश्वास का शांत आश्वासन है जिसके द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दावा हो सकता है। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा कि वे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे आज भी इतना ही विश्वास योग्य है जैसा वो प्रेरितों के काल में थी। इसमें परमेश्वर की संतान का विशेषाधिकार पेश किया गया है और हमें विश्वास द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। मसीह के सेवक उसकी सामर्थ्य के साधन हैं और उनके द्वारा वो अपनी चंगा करने की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। हमारा कर्तव्य है कि विश्वास की भुजाओं में उठाकर बीमारों और रोगग्रस्तों का मामला परमेश्वर तक पहुंचावे। हमें उनको सिखलाना चाहिए कि महान वैद्य पर विश्वास रखें। त्राणकर्ता चाहता है कि हम बीमारों, निराशों, दुखियों को प्रोत्साहन दें कि वे उसकी सामर्थ्य को पकड़ लें। प्रार्थना के उत्तर पाने की शर्तें। परंतु केवल उसी समय जब हम उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसके वायदों के पूरा होने का दावा कर सकते हैं। भजन लेखक कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। भजन संहिता 66 आयत 18। हम आंशिक रूप में या आधे मन से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी न होंगी। परमेश्वर के वचन में रोगियों के चंगा होने के हितार्थ खास प्रार्थना के विषय में आदेश दिए गए हैं। परंतु ऐसी प्रार्थना करना एक अति गंभीर विषय है और सावधानी के साथ सोच विचार किए बिना इस ओर पग नहीं उठाना चाहिए। प्रार्थना की अपने परिस्थितियों में बीमारी के चंगा होने के प्रति जिसे विश्वास द्वारा होना कहते हैं वह धृष्टता से कुछ कम नहीं है। बहुत से लोग व्यसन में लिप्त रहने के कारण अपने ऊपर बीमारी ले आते हैं। उन्होंने अपना जीवन प्राकृतिक नियम अथवा कड़ी शुद्धता के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं व्यतीत किया। दूसरों ने खाने पीने, कपड़े पहनने अथवा काम करने की आदतों से स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किया है। अवसर, कुछ प्रकार के अपराधों के कारण मस्तिष्क और देह कमजोर हो जाते हैं। यदि ऐसे लोगों को स्वास्थ्य की देन प्राप्त हो जाए तो कई एक तो परमेश्वर के प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने की गति जारी रखेंगे और ये तर्क उपस्थित करेंगे कि जब परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में चंगा कर देता है फिर तो वे अपनी दूषित आदतों को जारी रखने को स्वतंत्र हैं और बेलगाम अपनी भ्रष्ट आदतों में व्यस्त रहेंगे। यदि परमेश्वर इन लोगों को आरोग्य करने में एक आश्चर्य कर्म भी करे तो वो पाप को प्रोत्साहन देता है। लोगों को इस बात को सिखलाने में कि परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए क्योंकि वो सारी कमजोरियों को चंगा करता है, मेहनत व्यर्थ जाती है। जब तक उनको पहले ये न सिखलाया जाए कि अस्वस्थ आदतों को अपने में से पृथक करें। प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के हेतु उन्हें बुराई को छोड़ना और भलाई करना सीखना चाहिए। उनका चौगिर्द साफ सुथरा रहना चाहिए और उनके जीवन की आदतें ठीक होनी चाहिए। उन्हें परमेश्वर की प्राकृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो लोग स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उन पर यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि परमेश्वर की प्राकृतिक अथवा आध्यात्मिक व्यवस्था का उल्लंघन पाप है और उसकी आशीषों को ग्रहण करने के लिए पाप को मानकर उसको त्याग देना चाहिए। धर्म पुस्तक आज्ञा देती है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। जो प्रार्थना के लिए विनती करता है उसको इस प्रकार के विचारों से सूचित करनी चाहिए। हम आपके हृदय को पढ़ नहीं सकते, ना आपके जीवन की गुप्त बातों को जान सकते हैं। इनसे केवल आप और परमेश्वर ही परिचित हैं। यदि आप अपने अपराधों से पश्चाताप करें तो आपका कर्तव्य है कि उनको मान भी लें। गुप्त पाप मसीह के सामने मान लेना चाहिए, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। क्योंकि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु ख्रीष्ट। 1 यूहन्ना 2:1। हर एक पाप परमेश्वर के विरुद्ध अपराध है और परमेश्वर के सामने मसीह के द्वारा उसका इकरार करना चाहिए। हर एक प्रत्यक्ष पाप का खुलेआम इकरार होना चाहिए। जिस किसी को ठेस लगाई गई उसके साथ मेल मिलाप कर लेना उचित है और गलती को ठीक कर लेना चाहिए। जो आरोग्य होना चाहते हैं और वे दूसरों की बदनामी करने के अपराधी हैं, यदि उन्होंने परिवार में या पड़ोस में अथवा मंडली में फूट डलवाई है और शत्रुता तथा बैर को भड़काया है, यदि किसी बुरी आदत के कारण उन्होंने दूसरों को भी गुनहगार बनाया है, तो ये पाप परमेश्वर के सामने और जिनका अपराध किया गया है उनके सामने इकरार करने चाहिए। जो हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वासयोग्य और धर्मी है। 1 यूहन्ना 1:9। जब गलतियां ठीक ठाक कर ली जाए तब हम बीमारों की जरूरत को शांत विश्वास के साथ, जैसा परमेश्वर की आत्मा मार्गदर्शन करे, उसके सामने पेश कर सकते हैं। वो प्रत्येक जन को नाम बनाम जानता है और उसकी ऐसी देखरेख करता है मानो कि पृथ्वी पर कोई और प्राणी नहीं है जिनके लिए उसने अपना प्रिय पुत्र दिया है। परमेश्वर का प्यार इतना महान और अचूक है कि बीमार को उसमें भरोसा रखने और आनंदित होने को प्रोत्साहित करना चाहिए। चिंता रोग और बीमारी का कारण बनता है। यदि वे उदासी और शोक छोड़ दें तो उनकी पुनः स्वस्थता की आशा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यहोवा की दृष्टि उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। भजन संहिता 33:18। रोगियों के लिए प्रार्थना करते समय स्मरण रखना चाहिए कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। 8:26। हम नहीं जानते कि जो आशीष हम चाहते हैं वो अच्छी रहेगी अथवा नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थना में यह विचार सम्मिलित होना चाहिए। हे प्रभु, तू आत्मा के सारे भेद जानता है, तू इन जनों से परिचित है। उनके वकील यीशु ने अपने प्राण उनके बदले दिया, उसका प्रेम उनके लिए हमसे बड़ा है। यदि इससे तेरी महिमा प्रकट हो तथा दुखियों को कल्याण हो, तो हम यीशु के नाम पर विनती करते हैं कि वे फिर से स्वस्थ हों। यदि तेरी इच्छा नहीं है कि वे चंगे हों, तो हम विनती करते हैं कि तेरा अनुग्रह उनको चैन दे और तेरी उपस्थिति उनको संकट के समय संभाले। परमेश्वर अंत को आदि से जानता है, वो सब लोगों के हृदयों से परिचित है, हृदय की गुप्त बात से परिचित है। वो जानता है कि जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है वे उन दुखों को सहन कर सकेंगे या नहीं, जो उन हितार्थ पर आने वाली हैं कि वे जीवित रहें। वो जानता है कि उनके जीवित रहने से स्वयं उनको तथा संसार को वरदान मिलेगा अथवा श्राप। ये एक कारण है कि जब हम उत्साह के साथ प्रार्थना करते हैं हमें ये कहना चाहिए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। 22:43। जब यीशु गेतशिमनी के बाग में था उसने परमेश्वर के ज्ञान व इच्छा की अधीनता में ये शब्द कहे, हे मेरे पिता, जो हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। 26:39। और यदि वे शब्द उसके लिए उचित थे जो परमेश्वर का पुत्र था, तो हम जो सीमाबद्ध गलती के पुतले नश्वर हैं, ये हमारे ओठों के लिए कितने अधिक योग्य होंगे। उचित रीति ये है कि हम अपनी अभिलाषाओं को अपने सर्वज्ञानी स्वर्गीय पिता को सौंप दें, तब पूर्ण विश्वास के साथ अपना सर्वस्व उसके हाथ में छोड़ दें। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है यदि हम उसकी इच्छानुसार मांगे, परंतु अपनी प्रार्थनाओं को बिना नम्र भावना के पेश करना न्याय संगत नहीं है। परंतु अपनी प्रार्थनाओं की आदेश देने वाली नहीं, किंतु सिफारिश करने वाली शक्ल होनी चाहिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां परमेश्वर अपनी ईश्वरीय शक्ति से हमारी बीमारी को चंगा करता है, परंतु सारे रोगी चंगे नहीं किए जाते, उनमें से बहुत से भी मसीह में सो जाते हैं। पटमस के द्वीप में योहन को यह लिखने का आदेश मिला, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हां, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके संग हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:13। इसमें हम यह देखते हैं कि यदि बीमार चंगे नहीं होते तो इस सबब से उनको नहीं समझना चाहिए कि उनके ईमान में कमी है। हम सबकी यही इच्छा होती है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत और सीधा मिले, और यदि उत्तर में विलंब हो अथवा अप्रत्याशित रूप में मिले तो हम संभवतः निराश हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर सदा उचित समय में और जिस प्रकार हम चाहते हैं ठीक उसी प्रकार देने को अति बुद्धिमान तथा दयालु है। वह तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने से भी अधिक बेहतर कार्य करेगा, और इसलिए कि हम उसकी बुद्धि और प्रेम पर भरोसा रखते हैं, हमें यह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि वो हमारी इच्छा को स्वीकार करे, प्रत्युत उसके मनोरथ में प्रवेश होने और उसको पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी इच्छाएं तथा हमारे हित उसकी इच्छा में लोप हो जाने चाहिए। ये अनुभव जिनसे धर्म की परख होती है, हमारे हित उसकी इच्छा में लोप हो जाने चाहिए। ये अनुभव जिनसे धर्म की परख होती है, हमारे लाभ के लिए हैं। उनके द्वारा यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि हमारा विश्वास सच्चा और यथार्थ है और केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है अथवा परिस्थितियों पर अवलंबित है, अनिश्चय तथा परिवर्तनशील है। विश्वास अभ्यास से बलवान होता है। हमें धीरज को पूर्ण कार्य करने देना चाहिए, ये याद रखते हुए कि धर्म पुस्तक में परमेश्वर की बाट जोहने वालों के लिए कीमती वायदे दिए गए हैं। सब तो इन सिद्धांतों को समझ पाएंगे। कितने ही जो परमेश्वर की आरोग्य होने की करुणा की तलाश में हैं, सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सीधा और तुरंत मिलना चाहिए, अन्यथा उनका विश्वास खोटा है। इस कारण जो लोग बीमारी के कारण निर्बल हो गए हैं, उनको बुद्धिमानी के साथ सलाह देनी चाहिए कि वे समझबूझ से काम लें। उन्हें मित्रों की ओर अपने कर्तव्य की अवहेलना न करनी चाहिए अथवा आरोग्य होने के लिए प्रकृति के साधनों के प्रयोग में गफलत नहीं करनी चाहिए। यहीं पर अक्सर गलती की संभावना है। इस बात का विश्वास करके कि प्रार्थना के उत्तर में चंगे तो हो ही जाएंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, कहीं उससे विश्वास की कमजोरी प्रकट न हो जाए। परंतु उन्हें अपने मामलों को ठीक ठाक करने में उससे कम सावधानी नहीं करनी चाहिए जैसा वे उस समय करते जब मृत्यु का इंतजार हो रहा हो। उनको बुराई के समय अपने प्रियजनों से उत्साहपूर्ण शब्द कहने से तथा सलाह देने से नहीं डरना चाहिए। जो प्रार्थना के द्वारा चंगे होने की आशा रखते हैं, उनको अपनी पहुंच के अंदर चिकित्सा संबंधी साधनों को प्रयोग करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कष्ट को कम करने तथा प्रकृति को रोग निवृत्ति के कार्य में सहायता देने के निमित्त ऐसी औषधियों के प्रयोग करने में जिन्हें परमेश्वर ने प्रस्तुत किया है, विश्वास का इनकार नहीं होता। इसमें विश्वास का इनकार नहीं होता कि परमेश्वर के सहयोग में काम करें और अपने को रोग निवृत्ति की अनुकूल अवस्था में रखें। जीवन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना परमेश्वर ने हमारी शक्ति के अंदर रखा है। ये ज्ञान हमारी पहुंच के अंदर उपयोगार्थ रखा गया है। स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए हमें हर सुविधा का उपयोग करना चाहिए और प्राकृतिक नियमों के साथ हर संभावित अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जब हमें रोगी के चंगे होने के निमित्त प्रार्थना कर चुके, तो हम और भी जोर के साथ काम कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमें ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसके साथ मिलकर काम करें और उससे विनती करें कि उसका आशीर्वाद उन साधनों पर हो जिन्हें उसने प्रस्तुत किया है। चिकित्सा संबंधी साधनों के प्रयोग करने के निमित्त हमें परमेश्वर के वचन का अधिकार प्राप्त है। इज़राइल का राजा हिजकिया बीमार था और परमेश्वर का एक नबी उसके पास ये संदेश लेकर आया कि वो मर जाएगा। वो परमेश्वर के सामने रो रो कर चिल्लाया। परमेश्वर ने अपने सेवक की विनती सुनी और ये संदेश उसको भेजा कि उसकी आयु में 15 वर्ष और बढ़ाए गए हैं। परमेश्वर की ओर से एक ही शब्द हिजकिया को तुरंत चंगा कर सकता था, परंतु खास खास हिदायतें उसको दी गई। अंजीरों की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा। यशाया 38:21। जब हम रोगी के चंगे होने के लिए प्रार्थना करें तो उस परिस्थिति का जो भी परिणाम हो हमको परमेश्वर पर से विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमें किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख भोगना पड़े तो हम उस रिक्त कटोरे को स्वीकार कर लें और याद रखें कि पिता के हाथ उसको हमारे मुंह तक संभाले हुए हैं। परंतु यदि स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति हो तो भूलना नहीं चाहिए कि आरोग्यता के दयापात्र सृजनहार के प्रति नए तौर से कृतज्ञता के अधीन रखा गया है। जब 10 कोढ़ियों की शुद्धि हुई थी तो केवल एक ही ने लौटकर यीशु की स्तुति की। हम में से कोई उन विचारहीन 9 की भांति ना बने जिनके हृदय परमेश्वर की दया से अछूते रहें। हरेक अच्छा वरदान और हरेक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से, जिसमें अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब 1:17।